हरे कृष्णा। आज श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। सारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ और बल्कि सारी दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। विशेष रूप से वृंदावन में आज इस दिवस पर भक्त इकट्ठे होते हैं, प्रभुपाद जी के कमरों में आते हैं और बहुत ही एक भावनात्मक समय होता है ये, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के बिना तो हम यहाँ आज नहीं होते। तो आइए सबसे पहले हम सपार्षद भगवत विरह जनित विलाप ये भजन गाते हैं। जे आनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर,
प्रभु आचार्य ठाकुर,
कहा मोर स्वरूप रूप कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, कहा मोर भट्ट युग कहा कबीराज, एक काले को था गेला गोरनटराज, पाषाणे कुटी बो माथा अनले पशिब, गौरंग गुणेर निधे कोथा गेले पाबो, शेषव संगीरा संगे जे कोइलो विलास, से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, नरोत्तम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी ने जो सारे दुनिया के लिए किया है वो वर्णन कर पाना संभव नहीं है। आगे चल के जैसे 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 ये संस्था आगे बढ़ेगी और भक्तों की संख्या भी बढ़ेगी तो वैसे वैसे दुनिया को पता चलेगा कि श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया है। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों के लिए ये बहुत ही एक दुख का दिन है। वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के एक पार्षद हैं, भगवान के संग वो गए हैं, अभी भगवान के धाम में, भगवान की लीला में प्रविष्ट हुए हैं, परंतु हम सबको उन सब का संग वपुः रूप में नहीं मिल पा रहा है। ये दुख की बात सारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों के लिए है। फिर भी आध्यात्मिक स्तर में वाणी और वपु में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अभी भी हम सब के बीच में हैं। स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं मेरे किताबों के माध्यम से यहाँ पर रहूँगा। तो जैसे कि वाल्मीकि जी से कहा गया था ब्रह्मा जी के द्वारा कि जब तक इस पृथ्वी के ऊपर पहाड़ रहेंगे, समुद्र नदियाँ आदि रहेंगी, तब तक उनके द्वारा रचित रामायण ग्रंथ यहाँ पे रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जब तक प्रभुपाद जी के ग्रंथ यहाँ पे रहेंगे इस दुनिया में, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ विराजमान रहेंगे। वैसे प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा था कि 10,000 वर्षों तक उनकी किताबें रहेंगी, उनका आंदोलन चलेगा, उसके बाद ये कलयुग बहुत घोर रूप से आगे बढ़ना शुरू करेगा। इसलिए हमें प्रयास करना है कि श्रील प्रभुपाद जी के संग जाने का पूरा पूरा प्रयास करना है। बारंबार जन्म लेना ये अभी बहुत खतरे का सौदा है। जब श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में थे अपने पृथ्वी के लीला में, तो वो चाहते थे कि वृंदावन लौट के आए। 1965 में वो शारीरिक रूप से वृंदावन छोड़ गए थे, क्योंकि उन्हें उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेशों का पालन करना था। उन्हें विदेश में जाके, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में, श्रीमद् भागवत का और श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का संदेश का प्रचार प्रसार करना था, तो वह निकल पड़े। लगभग 70 साल की आयु थी उनकी। जो भगवान के भक्त होते हैं, इस आयु में यदि उनको वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वो वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहेंगे। और प्रभुपाद जी को एक ऐसे स्थान प्राप्त हुआ था, राधा दामोदर मंदिर में 2 कमरे मिले थे, तो और क्या चाहिए था श्रील प्रभुपाद को। फिर भी वो वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए और धीरे धीरे से क्या चमत्कार उन्होंने कर दिखाया। तो 12 वर्ष ऐसे खूब प्रचार उन्होंने किया, और प्रचार करने के बाद जब शरीर अंत में बिगड़ता गया और उन्हें पता चला कि अब शरीर त्यागने का समय बहुत ही निकट आ रहा है, तो श्रील प्रभुपाद जी ने सोचा कि मुझे वृंदावन लौटना पड़ेगा। वैसे उस समय वो बंबई में थे। बंबई में जब उनकी तबीयत बिगड़ती गई तो श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों से कहा कि मैं वृंदावन लौटना चाहता हूँ। तो उस समय बंबई के मंदिर का उद्घाटन होना था और बहुत आगे तक काम सेवा वहाँ पर बढ़ गई थी, तो भक्तों ने वहाँ कहा फिर यहाँ पे बंबई में क्या होगा, कृपया आप रह जाइए थोड़े समय के लिए। परंतु प्रभुपाद जी को पता था कि उनके लिए अब समय ज़्यादा नहीं बचा था, इसलिए वो वृंदावन लौटना चाहते थे। तो फिर भक्तों ने व्यवस्था की और श्रील प्रभुपाद जी पहुँच गए वृंदावन। जब वृंदावन पहुँचे तो वहाँ के भक्तों ने जब श्रील प्रभुपाद जी को देखा तो वो बहुत दुखी हो गए। इतने दुबले पतले हो गए थे, केवल हड्डियाँ ही थी मात्र श्रील प्रभुपाद जी के लिए। इसलिए उनको बड़ा दुख हुआ कि इस अवस्था में कैसे आए श्रील प्रभुपाद जी। तो खैर, अपने कमरे में फिर से प्रभुपाद जी आए। प्रभुपाद जी के लिए सारी व्यवस्था की गई थी। जब प्रभुपाद जी वहाँ आए, अपने पलंग पर लेटे 5 मिनट, लंबी यात्रा करके आए थे, थके हुए थे, 5 मिनट ऐसे ही अपने पलंग पे लेटे रहे, और फिर तमाल कृष्ण महाराज ने उनसे कहा, प्रभुपाद जी अब आप घर लौट के आए हो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ कहा नहीं, अपने दोनों कर कमलों को उन्होंने अपने वक्षस्थल पे लिया और उन्होंने कहा धन्यवाद। तमाल कृष्ण महाराज जी ने कहा, अभी आप श्री कृष्ण बलराम के संरक्षण में हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, और फिर वो कहने लगे, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, इतना ही कहा, सारा श्लोक नहीं कहा। मुकुंद माला स्तोत्र का ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को कई बार दोहराया करते थे, न केवल अपने प्रवचनों में, परंतु जब वो अपने आप अकेले रहते थे तो भजन के रूप में इस श्लोक को गाया करते थे। राजा कुलशेखर ने इस श्लोक को कहा था कि भगवान श्री कृष्ण, कृपया आप मुझे इसी समय आपके पास ले जाइए जबकि मेरा स्वास्थ्य ठीक है। मेरा मन एक राजहंस के समान है जो आपके कमल रूपी चरण कमलों में अटका हुआ है। जब और तबीयत बिगड़ जाएगी, कंठ में कफ वात पित्त आदि जम जाएंगे, उस समय आपका स्मरण कैसे हो पाएगा। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा, तो यद्यपि प्रभुपाद जी की स्थिति शारीरिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से खतरनाक थी, फिर भी प्रभुपाद जी अपनी चेतना में बिल्कुल स्थिर रहे। उनका चित्त श्री कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के नाम, कृष्ण की लीला आदि के ऊपर स्थिर था। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं जाके कृष्ण बलराम का दर्शन करना चाहता हूँ। उस समय रात हो चुका था। तो भक्तों ने कहा, प्रभुपाद जी कल सुबह जाइए। तो प्रभुपाद जी ने बात मान ली, और उस समय प्रभुपाद ने कहा, आप सब कुछ संभालिए। अभी भक्तों ने कहा कि हम कविराज या वैद्य को बुलाएं। प्रभुपाद जी ने कहा, आप सब संभालो। तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को आदेश दिया था कि जितने भी जीबीसी के सदस्य हैं, उस समय 23 थे, वो सारे यहाँ पर आ जाएं। तो दुनिया भर में फैले हुए थे सारे जीबीसी सदस्य, सारे संस्था की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। इधर उधर कोई अमेरिका में, कोई दक्षिण अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अफ्रीका में, कोई यूरोप में, भारत के भी अलग अलग भागों में थे। तो एक के बाद एक सारे आने लगे, और जैसे ही वो आए प्रभुपाद जी के सामने, तो अपने अपने स्थानों से उन्होंने बतलाना शुरू किया कि हमारे स्थान में क्या हो रहा है, कितने पुस्तकों का वितरण हो रहा है, कितने भक्त हैं, प्रचार कैसे चल रहा है। तो जब प्रभुपाद जी ये सुनते तो उनको बहुत आनंद होता, और इतना आनंद होता कि ऐसे लगता कि उनके अंदर नई जान आ गई है। और फिर वो उन भक्तों को प्रोत्साहित करते, उनको उत्साह दिलाते। यद्यपि उनकी दशा ऐसी थी, फिर भी इतने उत्साह के स्थिति में थे वो कि भक्तों को और आगे प्रचार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। परंतु इस समय सारे जो वरिष्ठ उनके शिष्य थे वो उनके पास में आए थे हरिनाम कीर्तन करने के लिए, प्रभुपाद जी के संग को प्राप्त करने के लिए, उनके अंतिम दिनों में वो प्रभुपाद जी के सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षण को प्राप्त करने के लिए आए थे। तो जब किसी भक्त ने प्रभुपाद जी से कहा कि आपके मित्र डॉक्टर घोष अब यहाँ वृंदावन आ रहे हैं, वो एक नया दवाखाना यहाँ एक कोई अस्पताल खोलना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, वो दवाखाना वाला है, वो अवश्य खोल दें, परंतु मेरे पास न आए वो कोई उपचार के लिए। वैसे मैं अब और कोई दवाई नहीं लेना चाहता, मैं केवल कीर्तन चाहता हूँ इस समय। यदि डॉक्टर घोष मेरे पास आएंगे तो वो मुझे कोई ना कोई दवाई देने का प्रयास करेंगे मुझे बचाने के लिए, परंतु मुझे और अब बचना नहीं है, मुझे अब केवल शरीर त्यागने दो, बस यही मेरी एक इच्छा है अभी। तो भक्तों ने जब ये बातें सुनी तो उनको बिल्कुल अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन क्या करते। उधर हरिकेश महाराज यूरोप से आए थे। जैसे ही हरिकेश महाराज को टेलीफोन मिला था कि प्रभुपाद जी के अंतिम दिन हैं, आप तुरंत आ जाइए, तो यूरोप से वो निकल पड़े थे। निकलने के पहले उन्होंने मुद्रणालय को फ़ोन किया था कि मैं कल ही जा रहा हूँ, तो मुझे कम से कम एक या दो तीन प्रतियाँ, जितने भी अभी किताबें छप रही हैं, कम से कम दो तीन प्रतियाँ तो मुझे दे दीजिए, बाकी आप बाद में छाप सकते हैं। तो उन्होंने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, ऐसे ये तीन इसके प्रतियाँ थीं, और उसके बाद फिर ईशोपनिषद। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ये जर्मन भाषा में था, और श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद भी जर्मन भाषा में था, और ईशोपनिषद ये युगोस्लाव भाषा में था। तो उन्होंने ऐसे एक एक प्रति लेकर वो निकल पड़े, और जैसे ही वृंदावन पहुँचे सीधे प्रभुपाद जी के पास आए, और उन्होंने वो किताबें दिखाई। प्रभुपाद जी ने जैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ये देखा, तो राधा कृष्ण के चित्र को देखा, और फिर इतने भाव विभोर हो गए कि उनके आंखों से आंसू आने लगे, और उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाया और हरिकेश महाराज के सर के ऊपर रख दिया, और फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि पहले ये मेरे सेक्रेटरी थे, केवल मेरी चिट्ठियों को टाइप करते थे, टाइपिंग का काम करते थे पहले। अब जब मैंने उनको कहा कि तुम केवल टाइपराइटिंग के लिए नहीं हो, तुम्हें आगे जाके खूब प्रचार करना है, पुस्तकों को छापना है यूरोप में जाके, तो उन्हें लगा कि मैं उनको ठुकरा रहा हूँ, उन्हें कहा कि मैं उनको मुझसे दूर कर रहा हूँ। फिर हरिकेश महाराज के पास दोबारा देख कर कहने लगे कि अब समझ रहे हो कि मैंने तुम्हें क्यों भेजा था यूरोप। तो हरिकेश महाराज भी रोने लगे, उन्होंने कहा कि हाँ अब मैं समझता हूँ। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने कहा, देखो मैंने सोचा ये कितना बुद्धिमान लड़का है, कितना कुछ कर सकता है, और यहाँ केवल बैठ के टाइपिंग कर रहा है, तो क्यों ना जाके यूरोप में खूब किताबें छापें और खूब प्रचार करें। फिर उन्होंने हरिकेश महाराज से पूछा कि कितने किताबें छपी हैं अभी। तो हरिकेश महाराज ने कहा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम के 1,20,000 प्रतियां छपी हैं, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 60,000 प्रतियां छपी हैं, और फिर ईशोपनिषद के 10,000 प्रतियां। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए इस खबर को सुन के, और छापो, सब जगह वितरण करो, प्रथम श्रेणी का मुद्रण है, ये बहुत ही अच्छा है, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। तो प्रभुपाद जी के इस दिव्य आनंद को देखकर सारे भक्तों को भी बहुत आनंद हुआ, और उनके हृदय में भी एक नया उत्साह जागृत हुआ। तो हरिकेश महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी, अभी आपको और अच्छा होना है, ठीक होना है और स्वस्थ होना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, स्वस्थ? मुझे इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है अभी। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो प्रभुपाद जी की इच्छा और तीव्र होती गई इस संसार को छोड़ने के लिए। और जब तमाल कृष्ण महाराज ने उनसे कहा कि प्रभुपाद जी, आप पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद जी के इस भाव को देखकर भक्तों को अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद जी राह देख रहे थे कि कब मैं ये शरीर त्यागूंगा। अब शिष्यों का कर्तव्य था कि वो अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करें, परंतु दूसरी ओर वो प्रभुपाद जी से दूर होना नहीं चाहते थे, प्रभुपाद जी के संग को चाहते थे। तो इस तरह से दोनों का ये एक विरोधाभास जैसे हो गया। एक दृष्टि से प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ण करना और उनके भाव के अनुसार चलना, दूसरी ओर प्रभुपाद को छोड़ना नहीं चाहते थे। आपस में सारे भक्त लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमें अब तैयारी करनी है, अब श्रील प्रभुपाद हमसे दूर चले जाएंगे, वपु रूप में नहीं रहेंगे, तो हमारी संस्था चलेगी कैसे। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि आपस में हम सबका सहयोग अच्छी तरह से हो। एक भक्त ने कहा, जब कोई दूत होता है वो किसी दूसरे देश में जाता है अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और फिर समय आ जाता है कि देश उसको बुला लेता है वापस कि स्वदेश चले आओ। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण अब श्रील प्रभुपाद जी को इस भौतिक जगत से वापस गोलोक वृंदावन बुला रहे हैं। और एक भक्त ने कहा कि अब श्रील प्रभुपाद जी हमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, और वो शिक्षा है कि कैसे हमें देह को त्यागना चाहिए। तो ऐसे जो विषयों की चर्चा हो रही थी, इससे भक्तों को आनंद तो नहीं मिल रहा था, परंतु इनके बारे में, इन विषयों की चर्चा करना आवश्यक था। जब उनको पता चला कि अब प्रभुपाद जी ने ठान लिया है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा भी ऐसी ही है कि उनके लिए अब ज़्यादा समय नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, फिर बहुत गंभीर भाव निर्माण हो गया वहाँ पर। तो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था, उसी स्थान में प्रभुपाद जी के समाधि के लिए कार्य शुरू हो गया। और आप सब तो वृंदावन में गए हैं, कृष्ण बलराम मंदिर जा गए हैं, आपको पता है कि प्रभुपाद जी की समाधि कहाँ है। तो वहाँ पर खुदाई आदि का काम शुरू हो गया। वहाँ पे बाकी सब कुछ जैसे है वैसे ही चल रहा था। गुरुकुल के बच्चे आ रहे थे, अपने पढ़ाई उनकी चल रही थी, मंदिर में आके कीर्तन आदि कर रहे थे। तो बाह्य दृष्टि से ऐसे लग रहा था कि सब कुछ जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है, परंतु अब प्रभुपाद जी तैयारी कर रहे थे। अब तक उन्होंने अपने वचन को पूर्ण किया था। कई बार प्रभुपाद जी की तबीयत खराब हो गई थी, गंभीर अवस्था भी थी, परंतु भक्तों ने बार बार उनसे निवेदन किया था, आग्रह किया था कि नहीं, आप हमें छोड़कर मत जाइए, आप रहिए हमारे संग, आपकी आवश्यकता है, आपके बिना हम नहीं कर पाएंगे भक्ति और नहीं इस संस्था के कार्य को आगे चला पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने इनकी इच्छा को पूरी की थी, इनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार की थी, और केवल कृष्ण की कृपा से और स्वयं उनकी, प्रभुपाद जी की इच्छा से कि हमें यहाँ रहना है, मेरा काम अधूरा है अभी तक, वो रहे थे अभी। परंतु यद्यपि उनकी इच्छा उस समय थी कि मैं भक्तों के साथ में रहूं ताकि और ये संस्था का काम आगे बढ़े, वो ये भी जानते थे कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। भक्त कभी भी अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं मानता है। भक्त हमेशा भगवान के चरण कमलों में आश्रित रहता है, भगवान की इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है, जो भी भगवान की इच्छा है उसके अनुकूल वो कार्य करता है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने ये दिखाया कि शिक्षाष्टकम के अंतिम श्लोक में आश्ली शिवा पादरतम पिनष्टुमाम इत्यादि जब महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे चाहे साथ में रखें या ठुकरा दें, मैं आपका नित्य दास हूँ। तो यही भाव उनका था प्रभुपाद जी का। तो यद्यपि प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को कहा था कि मैं आपके साथ में रहूँगा, परंतु फिर भी वो श्री कृष्ण के इच्छा के शरण में आ चुके थे। पहले श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों से कहा था कि श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करो। जब भक्तों ने आके प्रभुपाद जी से कहा था कि आप रुक जाइए यहाँ पर, इतने जल्दी जाइए मत, तो प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा था कि ये प्रार्थना करो कि हे कृष्ण, यदि आप चाहें तो प्रभुपाद को बचाइए, प्रभुपाद को ठीक कीजिए, प्रभुपाद को स्वस्थ रखिए। तो उन्होंने इस तरह से दोनों चीजों का समन्वय किया था, एक कि भक्तों की इच्छा है कि वो यहाँ पर रहें, और वैसे आवश्यकता तो थी भी श्रील प्रभुपाद जी की रहने के लिए यहाँ पर, और दूसरी ओर थी कृष्ण की इच्छा। प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि कृष्ण की इच्छा के विरोध वो यहाँ पर रहें, विरुद्ध होकर वो यहाँ पर रहें। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने इतनी बुद्धिमानी से ऐसे एक प्रार्थना कही कि आप ऐसे कहिए कि हे श्री प्रभुपाद जी, यदि आपकी इच्छा हो तो श्री प्रभुपाद जी को पुनः स्वस्थ करिए, आप उनको ठीक कीजिए। इस तरह से आपकी इच्छा यदि हो, इन शब्दों के द्वारा ये स्पष्ट था कि भक्त श्री कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे, साथ साथ में वो अपनी हृदय की बातों को व्यक्त करना चाहते थे कि कृपया आपके शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को हमसे दूर होने न दीजिए। इसके पहले जब संस्था के 2-4 साल हुए होंगे, और जब प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य में कई चुनौतियां आई थी, तो प्रभुपाद जी ने भक्तों से कहा था कि आप ये प्रार्थना कीजिए कृष्ण से कि हमारे गुरु महाराज का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। परंतु अब प्रभुपाद जी को लग रहा था कि अब ऐसे नहीं करना चाहिए, अब श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से एक प्रेम का तनाव जैसे भगवान और भक्तों के बीच में होता है, वैसे प्रभुपाद जी के शिष्यों में और प्रभुपाद जी में थी। प्रभुपाद जी अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते थे, परंतु साथ साथ कृष्ण की इच्छा को भी पूर्ण करना चाहते थे। इस तरह से ये एक प्रकार का तनाव था, प्रेम का तनाव। जब अपने अंतिम दिनों में इस तरह से प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, तो उन्होंने साबित किया कि एक शुद्ध भक्त अपने प्राण को त्यागने की तैयारी कैसे करते हैं, उनकी दशा क्या होती है। कभी भी श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त को एक साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। साधारण व्यक्ति कर्म सिद्धांत के, कर्म के नियमों के अधीन होते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी कभी भी कर्म के अधीन नहीं थे। जिस प्रकार से जब चांद के सामने से बादल जाते हैं, तो ऐसे प्रतीत होता है कि चांद हिल रहा है, चांद पीछे की ओर जा रहा है। यदि बादल दाहिने ओर चल रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि चांद बाएं ओर जा रहा है, परंतु वास्तव में चांद कहीं नहीं जा रहा, चांद वहीं है, बादल ही घूम रहे हैं। इसी प्रकार से हमें कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति थे। यद्यपि उनका उनका शरीर दिखने में अब ठीक नहीं था, वो बिल्कुल हड्डियाँ ही थी, बस हड्डी और बस चमड़े था, बस शारीरिक रूप से देखा जाए तो, फिर भी उन्हें साधारण हमें नहीं मानना चाहिए। जब श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आए थे तो उन्होंने भक्ति का प्रचार किया था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता में कहे थे। आगे चल के उद्धव गीता में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उपदेश और संदेश उद्धव जी को दिए थे। परंतु इन आदेशों का पालन करना इतना आसान नहीं था। तो श्री कृष्ण के 4500 वर्षों के बाद में श्री कृष्ण स्वयं पुनः आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने श्री कृष्ण के भक्ति के संदेशों को बहुत सुलभ कर दिया। हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन के द्वारा सबको कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करना है ये दिखलाया। और चैतन्य महाप्रभु के लगभग 500 साल बाद अब श्रील प्रभुपाद जी आए और उन्होंने कृष्ण भक्ति के रास्ते को और भी सुलभ बनाया और आधुनिक काल के दुनिया के लोगों के लिए, विश्व भर के लोगों के लिए ये दिखलाया कि कैसे कृष्ण भक्ति की जा सकती है और कैसे जीवन को सफल बनाया जा सकता है। वैसे मृत्यु का सामना श्रील प्रभुपाद जी को कई बार करना पड़ा। सबसे पहली बार जब वो जहाज में थे बीच समंदर में, और हर बार श्रील प्रभुपाद जी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके थे। परंतु अब उन्होंने, उनको पता चला कि श्री कृष्ण ने अब इशारे दिए हैं, कई इशारे दिए हैं, इसलिए अब मुझे समझ लेना चाहिए। इसलिए अब उनके अंतिम उपदेश रह गए थे। फिर भी उनके जो भक्त थे पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए थे, और ये आंदोलन के लिए अभी शत्रु भी बहुत थे दुनिया भर में, तो प्रभुपाद जी टालते रहे अपने मृत्यु को बार बार। लेकिन कब तक टाल सकते थे? आज नहीं तो कल, यह भी शरीर है, शरीर को त्यागना तो पड़ता ही है। तो इसलिए, और वैसे भी एक बात है कि यदि वो 100 साल भी और रहते तो भक्तों को रहता लगता कि और रहना चाहिए, अब भी प्रभुपाद जी के जाने का समय नहीं आया है। इसलिए प्रभुपाद जी समझ गए कि ये कृष्ण का इशारा है तो मुझे इसको मान लेना चाहिए। और उस समय प्रभुपाद जी ने जो एक निकट का संबंध अपने शिष्यों के साथ में दिखलाया, प्रदर्शित किया, वो बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला था। ऐसे आदान प्रदान प्रेम का अपने शिष्यों के साथ में इतनी निकटता से प्रभुपाद जी ने नहीं दिखलाया था पहले, सिवाय सबके सबसे पहले के दिनों में जब पहली बार प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे और लोगों को पता नहीं था कि ये प्रभुपाद जी हैं, कितने महान भक्त हैं, क्या हैं, उनको यूं ही स्वामी जी कह के पुकारते थे, कभी उनको पता नहीं था कि कैसे सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए उनके साथ में, उनकी सेवा कैसी करनी चाहिए, इनको वैष्णव आचार वगैरह सब पता नहीं था, शिष्टाचार क्या है, सदाचार क्या है। तो उस समय प्रभुपाद जी बहुत करुणामय अवस्था में उनके साथ इतने आसानी से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उन दिनों के बाद में, यद्यपि प्रभुपाद जी अपने भक्तों के संग में बड़े प्रेम से रहते होते थे, परंतु अब प्रचार का जब समय आया तो कभी कभी उनको डांटना पड़ता था, और जब वो प्रचार करते थे तो काफी एक सिंह रूप धारण करते थे कि ये मायावादी लोग, वैज्ञानिक लोग और नास्तिक लोग, उनकी कड़ी निंदा करते थे। यदि ऐसे वो बात नहीं करते तो उनके शिष्य समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन अभी पुनः जब शरीर त्यागने का समय आया था तो प्रभुपाद जी वही निकट के संबंध पुनः स्थापित कर रहे थे। एक भक्त ने आके श्रील प्रभुपाद जी से कहा, ये फल का रस है, आप लीजिए। और प्रभुपाद जी कहते नहीं, तो ये भक्त फिर उनसे थोड़ी जबरदस्ती करते कि नहीं आप ले लीजिए। तो फिर भक्त को लगता कि मैं कैसे इतना जबरदस्ती करूं, मेरे गुरु हैं। तो फिर वो कहते प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, आप तो मेरे गुरु हैं और मैं यशोदा माता की तरह तो नहीं हूँ कि आपके प्रति ऐसे ज़बरदस्ती करूँ, परंतु क्या करूँ, आपके स्वास्थ्य के लिए लेना ये बहुत आवश्यक है, तो कृपया आप ये फल का रस ले लीजिए। उसी प्रकार से अन्य जितने भी भक्त थे जो उनका देखभाल करते थे, वो बीच में आके थोड़ा ज़बरदस्ती करते थे प्रभुपाद जी से कि कृपया आप ये थोड़ा बहुत तो खा लीजिए, थोड़ा बहुत तो पी लीजिए। और उस समय भक्तों को स्मरण आया ईश्वरपुरी का। जब ईश्वरपुरी के गुरु महाराज श्रील माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम दिनों में थे, तो श्रील ईश्वरपुरी ने किस प्रकार से माधवेंद्रपुरी की सेवा की थी। छोटी से छोटी सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा, दोनों में ईश्वरपुरी लगे रहे। जब ईश्वरपुरी केवल पलंग में थे तो उनके मलमूत्र को साफ करना पड़ा, वृद्धावस्था में कभी कभी ऐसे होता है, बड़े खुशी से उन्होंने किया। और अन्य समय पे उनको उनके साथ में बैठ के कृष्ण कथा कहना, कृष्ण नाम लेना, ये भी उन्होंने किया। तो उसी तरह से भक्त लोग सोच रहे थे कि हमें भी ऐसे प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और उस समय प्रभुपाद जी ने कोई नियम नहीं रखे। पहले प्रभुपाद जी के सेवक होते थे और वो बहुत रोकते थे सबको कि नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, सही समय पे आइए, प्रभुपाद जी व्यस्त हैं। परंतु इस समय जब प्रभुपाद जी अपनी शैया में लेटे हुए थे, तो प्रभुपाद जी ने सबको अनुमति दी थी कि जितने भी भक्त वृंदावन में आते प्रभुपाद जी का दर्शन करने के लिए, उन सबको उन्होंने अनुमति दे दी उनके चरणों को मालिश करने के लिए। और इतना ही नहीं, वो साथ में बैठ सकते थे, सुबह से रात, रात भर भी बैठ सकते थे प्रभुपाद जी के पास में, उसी कमरे में। तो फिर भक्त लोग आते जाते, वहाँ पे बैठते, कोई मालिश करते, कोई कीर्तन में भाग लेते। और इतना ही नहीं, जब प्रभुपाद जी अपने भागवत के तात्पर्यों को कह रहे थे, ऐसे प्राय शरीर में जान नहीं थी, इतनी शारीरिक कमजोरी थी, उनका शरीर प्राय हड्डी और चमड़ा था बस, और कुछ नहीं था, फिर भी प्रभुपाद जी के अंदर इतना उत्साह था, उनका मन बिल्कुल स्पष्ट था, बुद्धि अभी भी बहुत तीव्र थी। तो एक भक्त उनको श्रीमद् भागवत के श्लोक कह के सुनाते, और फिर प्रभुपाद जी लेटे लेटे डिक्टाफोन मशीन में वो तात्पर्य कहते, और कभी कभी संस्कृत श्लोक भी कहते। तो यद्यपि शारीरिक रूप से वो इतने दुर्बल हो गए थे, परंतु उनकी स्मृति शक्ति, उनकी बुद्धि बहुत ही तेज थी, बहुत तीव्र थी, इसलिए वो तात्पर्य करते रहे और बड़े आश्चर्यचकित होकर सारे भक्त लोग देखते रहे। पहले प्रभुपाद जी एकांत में अपने कमरे में बीच रात में ऐसे तात्पर्य वगैरह कहते थे, परंतु अब सबके सामने ये हो रहा था। तो जो प्रभाव भक्तों के ऊपर हुआ, इसका वर्णन करना मुश्किल है। तो इस तरह से सारे भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी के निकट का संग प्राप्त हुआ। उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने बार बार कहना शुरू किया, पहले भी कहते थे इस बार भी, कि वो मृत्यु से नहीं डरते हैं। मृत्यु से क्यों डरना है, हम तो हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, हम आत्मा हैं। जब हृदयानंद महाराज उनके पास आए और किताबें लेकर आए पोर्चुगीज भाषा में, तो प्रभुपाद जी ने उनको प्रेरित किया और कहा कि यही जीवन है, ये कृष्ण भावना अमृत ही सही जीवन है। ये हड्डी और मांस आदि के शरीर में क्या रखा है, ये भौतिक शक्ति केवल हड्डियों का है बस, हमारा असली जीवन ये नहीं है। वैसे पहले भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, एक ऋषि थे जो केवल, इनका शरीर केवल हड्डियों का था, हिरण्यकश्यप में भी ऐसे किया था। फिर तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, आप भी ऐसे कर रहे हैं प्रभुपाद जी, आपके शरीर में अब केवल हड्डियां दिख रही हैं, फिर भी आप जीवित हैं और आप अनुवाद कर रहे हैं, टीकाएं आपके तात्पर्य आदि कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ तो इन हड्डियों का देखभाल थोड़े समय के लिए करना चाहिए, परंतु असली जीवन है श्री कृष्ण भावनामृत। तो उस समय और एक भक्त आए जो ईरान में प्रचार करते थे, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी आप ईरान कब आएंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी तुम्हें इन हड्डियों को ले जाना पड़ेगा। और एक भक्त आए, उन्होंने कहा, और सारे भक्तों ने मान ली इस बात को कि श्री प्रभुपाद जी अब भीष्म देव की तरह दिख रहे थे, जैसे भीष्म देव तीरों की शैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे थे। भीष्म देव को कष्ट नहीं हुआ, उनको कोई दर्द नहीं हो रहा था, उनका मन बिल्कुल स्पष्ट और साफ था। ठीक उसी तरह से अब श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में थे, शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं थी, फिर भी बड़े स्पष्ट बुद्धि से वो अपने कार्यों को किए जा रहे थे। अपनी सेवा में उन्होंने सेवा को बंद होने नहीं दिया। तो ये सारे भक्त जो है चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद जी कुछ खाएं, कुछ पिएं, परंतु प्रभुपाद जी ने उनकी बात नहीं मानी। ही सेड, वो कहने लगे कि अभी शरीर त्यागने का समय आया है और ये ठीक होना ये तो भौतिक है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। अब श्री कृष्ण की इच्छा है कि मैं इस शरीर को त्यागूं, इसलिए अब मुझे केवल हरिनाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यही हरिनाम और भागवत कथा यही मेरे लिए औषध है इस समय। तो और एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी केवल आपकी उपस्थिति ही इस धरातल पे कलयुग के प्रभाव को दूर रख रही है, तो इसलिए कृपया आप मत जाइए। तो प्रभुपाद जी ने उस समय कहा कि अब ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कृष्ण बलराम के हाथ में है। और केवल वो अनुवाद नहीं कर रहे थे और केवल कीर्तन नहीं कर रहे थे, केवल भक्तों से बात नहीं कर रहे थे, परंतु और जो व्यवस्थापन की बातें थीं वो भी करने लगे। उन्होंने एक नए ट्रस्ट की स्थापना की, भक्त वेदांत स्वामी चैरिटी ट्रस्ट, जिसका उद्देश्य था कि बंगाल में जितने भी प्राचीन काल के गौड़ी मंदिर आदि थे उनका देखभाल वगैरह करना। तो ऐसे बातें भी श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में कर रहे थे। फिर थोड़े समय बाद उनकी बहन, जिनको कि भक्त लोग पिशिमा के नाम से पुकारते थे, वो आई। और जैसे ही वो आई तो प्रभुपाद जी ने उनकी छोटी बहन से कहा मेरे लिए खिचड़ी बनाओ, क्योंकि पिशिमा की खिचड़ी जो है बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी। तो सारे भक्त लोग हैरान हो गए, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी आप तो केवल पानी और रस पी रहे हैं, ऐसे आप खिचड़ी वगैरह नहीं खा सकते, पचन नहीं होगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी बहन जो है ये वैष्णवी है, तो जो भी वो मेरे लिए बनाएगी, चाहे वो अच्छा हो वो बुरा, वो अच्छा ही होगा मेरे लिए, क्योंकि ये वैष्णवी है। और वैसे भी भगवान ने मेरे अभिमान को भंग कर दिया है और देखो मेरे शरीर की क्या दशा हुई है, इसे मैंने इतने सारे अपराध किए इसलिए अब मेरे शरीर की ये दशा हुई है। तो पिशी माँ ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आपने कभी कोई अपराध नहीं किया। सारे भक्तों ने भी कहा बिल्कुल आपने कोई अपराध नहीं किया, आप कर ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, जब भक्त प्रचार करता है तो उसे कभी कभी कठोर होना पड़ता है। तो ऐसे कोई लोग कहते थे कि मैंने इस तरह से प्रचार किया कि एक हाथ में मैंने गदा धारण किया, दूसरे हाथ में भागवतम धारण किया और इस तरह से मैं प्रचार करता था। तो खैर जो भी हो, अब मेरी बहन के लिए अच्छी व्यवस्था करो मेरे जाने के बाद। थोड़ी देर बाद उनके थोड़े गुरु भाई वहां पर उनसे मिलने आए, जैसे कि निष्किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, पुरी महाराज, आश्रम महाराज इत्यादि। और लगभग 20 ऐसे भक्त थे, 20-25 ऐसे भक्त थे प्रभुपाद जी के पास में आए। प्रभुपाद जी सो रहे थे उस समय, कीर्तन चल रहा था, तो ये सारे गुरु भाई भी प्रभुपाद जी के वहाँ बैठे रहे, कीर्तन में शामिल हो रहे थे। जब प्रभुपाद जी अपने नींद से जागे, उनके गुरु भाइयों को देखा तो उनसे बात करने लगे और कहने लगे कि सारी दुनिया ये एक बहुत ही सुंदर क्षेत्र है प्रचार के लिए। मैंने पूरी कोशिश की, मैंने ये नहीं देखा कि मैं सफल हो जाऊंगा या नहीं, केवल चैतन्य महाप्रभु की संतुष्टि के लिए की मैंने ये किया, ये मैंने प्रचार अफ्रीका में, रशिया में, सब जगह। और फिर प्रभुपाद जी अपने नम्र स्वरूप को प्रकट करने लगे, सारे उनके गुरु भाइयों से कहने लगे मैंने बहुत अपराध किए हैं, इसलिए कृपया मुझे क्षमा कीजिए। तो उनके गुरु भाइयों ने तो बात नहीं मानी इस, तो उन्हें कहा नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, आपने तो कोई अपराध नहीं किया है, आप ही हमारे नेता हैं, आप हमें आदेश दीजिए, आप हमें दंड दीजिए, ऐसे मत कहिए। तो प्रभुपाद जी कहने लगे नहीं नहीं मेरे मुझे इतनी सफलता प्राप्त हुई, इतना ऐश्वर्य प्राप्त हुआ मुझे, तो मुझे इस बात का घमंड हो गया। तो पुरी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं आप कभी भी घमंडी नहीं हुए, बल्कि आपके शुद्धता और भक्ति के कारण जैसे जैसे आप प्रचार करते रहे वैसे वैसे ऐश्वर्य और सफलता आपके पीछे पीछे आती रही। तो पुरी महाराज ने कहा कि आपने लाखों लाखों लोगों को बचाया है इस दुनिया में, इसलिए आपका नाम होना चाहिए महापतित पावन। इस तरह से प्रभुपाद जी ने अपनी नम्रता का प्रदर्शन किया, जो कि जब प्रचार का समय होता है उस समय कभी कभी ये संभव नहीं होता है। लेकिन जब अब मृत्यु का समय पास आ गया था तो प्रभुपाद जी ने अपने ये वैष्णव कि जो गुण होते हैं नम्रता के, वो भी प्रदर्शित किए। जब लोकनाथ महाराज वहाँ पर आए और उन्होंने अपने पदयात्रा की खबर दी, तो उस समय भी प्रभुपाद जी बहुत ही उत्तेजित हुए और प्रेरित हुए कि कितनी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा मैं अभी बैलगाड़ी में बैठ के मैं भी जाना चाहता हूँ, वृंदावन की परिक्रमा करूंगा, गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा। तो सारे भक्त हैरान हो गए, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी आपकी आपका शरीर इस लायक नहीं है कि वो बैलगाड़ी में बैठे, और वृंदावन और ब्रज और गोवर्धन की सड़कें जो हैं अच्छी नहीं हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है यहाँ पर, तो आप बैलगाड़ी में बैठ के जाएंगे तो आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। तो जो कविराज आए थे उन्होंने भी कहा नहीं आप नहीं ले जा सकते उनको, क्योंकि उनकी शरीर की दशा इस तरह की है कि आप ले जाएंगे तो वो लौट कर नहीं आएंगे। दूसरी ओर प्रभुपाद जी खूब जाना चाहते थे, तो क्या करें, फिर उन्होंने ठान लिया कि मैं तो जाऊंगा। फिर सारे भक्त बड़े दुखी होकर अपने अपने कमरों में गए रात में, और फिर रात के बीच में तमाल कृष्ण महाराज इत्यादि आए उनके पास और कहने लगे, रोते रोते आए। प्रभुपाद जी ने कहा क्या बात है, तुम नहीं चाहते हो ना कि मैं जाऊं? हाँ, हम रात भर सो नहीं पाए। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों की बात मान ली। और फिर निष्किंचन दास कृष्णदास बाबा जी जो उनके साथ में बैठे थे उनसे कहा कि देखो ये भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं। और फिर नवंबर 14, 1977 लगभग 7:30 बजे शाम को, वैसे मैंने सुना है कि ये 7:20 या 7:22 तक ही हुआ, प्रभुपाद जी ने अपना शरीर त्याग दिया और उनके शरीर त्यागने से उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया अपने शिष्यों को भी और सारी दुनिया को, और सारे भक्तों को भीष्म देव का उदाहरण स्मरण आया। उसी दिन पर एक कविराज ने उनको पूछा था कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ इच्छा नहीं। ये 3 शब्द उन्होंने हिंदी में कहे, कुछ इच्छा नहीं। और जब थोड़े दिन पहले उनके एक जो शिष्य की एक पुत्री थी उसका उसने शरीर त्याग दिया था, तो प्रभुपाद जी ने कहा था, इस बच्ची ने वृंदावन में शरीर त्याग दिया है तो निश्चित ही वो भगवान के धाम में जाएगी। परंतु हमें यह भी जानना है कि वृंदावन ये एक चेतना का स्तर भी है। तो चाहे यदि वृंदावन, यदि श्रील प्रभुपाद जी ने अपना शरीर लंदन में, अमेरिका में, बम्बई में, कहीं भी त्यागा होता तो वो फिर भी वृंदावन तो भगवान के धाम में तो जाते ही। फिर भी क्योंकि प्रभुपाद की यात्रा वृंदावन से शुरू हुई थी, अब वृंदावन में ही समाप्त हुई। वृंदावन धाम की विशेषता तो है ना, इसलिए जब प्रभुपाद जी यहाँ आए और वृंदावन धाम में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और गोलोक वृंदावन वो चले गए। और जाते जाते उन्होंने दिखाया कि कैसे हमें शरीर त्यागना चाहिए, कैसे हमें वृंदावन में रहना चाहिए, भले हम बेलगाम में हों, हम लंदन में हों, कहीं भी हों। वृंदावन सब जगह ले गए प्रभुपाद जी, वृंदावन को छोड़ के तो गए, परंतु दुनिया भर वृंदावन के दूतावासों को खोल दिया। बेलगाम में भी यहाँ दूतावास है, राधा गोकुलानंद मंदिर। गोलोक वृंदावन का दूतावास प्रभुपाद जी ने खुलवाया। हालांकि गोलोक यहाँ पर प्रभुपाद जी तो नहीं आए, परंतु वाणी रूप में, पुस्तक रूप में, उनके भक्तों के रूप में, यहाँ पर उनके आदेशों के रूप में प्रभुपाद जी यहाँ पर हम सब के बीच में भी हैं। आज उनके तिरुभाव दिवस पर हम सब श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम भी उन्हें प्रसन्न कर सकें, उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें, कि हम स्वयं शुद्ध भक्त बने और दुनिया में खूब प्रचार करके अन्यों को भक्त बनाएं, आपस में हम बड़े सहयोग से, बड़े प्रेम से रहें, भक्त समाज में प्रेम और विश्वास की भावना अच्छी हो, इससे प्रभुपाद जी प्रसन्न निश्चित होंगे। तो ऐसी प्रार्थना और ऐसी कामना से अवश्य प्रभुपाद प्रसन्न होंगे और हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव दिवस महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हरे कृष्णा।